ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، دين کی تین بنیادیں ہیں، جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے سے 2 مہینے پہلے تشریف لائے تھے، حاضر ہوئے تھے ایک طالب علم کی حیثیت سے، اور پھر ایک ایسا نیاپن انہوں نے اختیار کیا تھا کہ لوگوں کو توجہ زیادہ ہو اور غور کریں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر. مشکا شریف میں یہ روایت بہت تفصیل سے ہے، حدیث شریف میں ان کی کیفیت بڑی عجیب تھی. وہ یہ ہے کہ وہ ایک دم نوجوان تھے اور سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، سیاہ بال تھے، صاف ستھرے تھے. صاف ستھرا ہونا بتا رہا تھا کہ یہیں کے کوئی آدمی ہے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں تھا. صحابہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے، اور اتنا قریب بیٹھ گئے کہ آپ کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا دیے. پھر آپ سے کچھ سوالات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں رحمت فرمائے. ہر جواب پر وہ یوں کہتے رہے کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بڑا تعجب کرتے تھے کہ بھائی اگر آپ کو معلوم ہے یہ چیز تو پھر آپ پوچھے کیوں، اور اگر آپ کو پہلے سے معلوم نہیں تھی یہ بات جو آپ نے سوال کی ہے تو پھر آپ صحیح فرما رہے ہیں کیسے بول رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں بولنا تو جب بولتا ہے، جب ہوتا ہے جب آدمی کو پہلے سے پتہ ہو کہ صحیح کیا ہے اس میں غلط کیا ہے. بہرحال کچھ سوال جواب میں اس کی ندرت تھی، نیاپن تھا، اور ان کی شخصیت میں بھی کہ ہم لوگ تھوڑا سا چھمبے میں تھے. اور یہ اصل میں یہ کیفیت اس وجہ سے بھی تھی کہ توجہ ہو جائے سامعین کی. چاہے وہ چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی وہ صاحب کدھر گئے، دیکھو صاحبہ باہر گئے. انہوں نے کہا کہ وہ تو ہے ہی نہیں، غائب ہو گئے، پتہ نہیں کدھر گئے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے اور یہ تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تم کو تمہارے دین سکھلائے. اتاکم یعلمکم دینکم، اس میں تین سوال کیے، چار سوال کیے، چوتھا سوال جو ہے نا وہ قیامت کے بارے میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بھائی قیامت ایک ایسی چیز ہے کہ المسئول عنہ بعلم من السائل، اس میں مسئول اور سائل جو ہیں وہ ایک ہی ہوتے ہیں. پوچھا جس سے پوچھا جائے وہ ادھر آ جائیں، اور اوپر صوفے پہ بیٹھ سکتے ہیں. یہ حضرات ویسے ہی نیچے بیٹھ گئے ہیں، ضروری نہیں ہے نیچے بیٹھنا. ہے تو بہت اچھی بات کہ دین کی بات چونکہ ہم کر رہے ہیں تو دین کی بات کا احترام ظاہر کرنے کے لیے ساتھی نیچے بیٹھ گئے، بہت بڑی بات ہے. اگر کسی کو ساتھی کو سہولت ہو، ضرورت ہو تو صوفے پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں. ایک سوال آپ نے، آپ سے کیا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا ایمان کے بارے میں. آپ نے ایمانیات بتائیں. دوسرا سوال کیا اسلام کے بارے میں، آپ نے اسلامیات بتائیں. ایمان اور اسلام جو ہیں ان کی ایک عجیب خصوصیت ہے. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ اذا اجتماع تفرقا و اذا تفرقا اجتماع. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کو الگ الگ ذکر کیا جاتا ہے تو یہ مل کے مراد ہوتے ہیں، جب ان کو ملا کے ذکر کیا جاتا ہے تو یہ الگ الگ مراد ہوتے ہیں. مطلب ایمان اور اسلام کو ایک ساتھ بولنے جائیں گے آپ تو پھر ایمان الگ ہو جائے گا، اسلام الگ ہو جائے گا. لیکن آپ ایمان بولیں گے، صرف ایمان کا ذکر آپ کریں گے تو ایمان بھی مراد ہوگا، اسلام بھی مراد ہوگا. صرف اسلام کا ذکر کریں گے تو ایمان بھی مراد ہوگا، اسلام بھی مراد ہوگا. تو तो जब इनको अलग जिक्र किया जाता है तो ये दोनों मिल के मुराद होते हैं, और जब इनको एक जगह जिक्र करें आप किसी जगह पर तो फिर ये दोनों अलग अलग मुराद होते हैं, दोनों का तसव्वुर अलग है, मफहूम अलग है। इसीलिए मोमिनीन का जिक्र आएगा तो उसमें मुस्लिमीन भी मुराद होंगे, मुस्लिमीन और मोमिनीन दोनों मुराद होंगे, मुरादिफ के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मुरादिफात कहते हैं कि एक लफ्ज़ बोलना और दूसरा भी उसके साथ शामिल हो जाता है मुराद होने में। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने चूंकि जमा किया कि इस्लाम का सवाल किया, ईमान का सवाल किया, दोनों फिर सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए। तो ईमानियात में मानना होता है और इस्लामियात में करना होता है। ईमानियात बात कबूल करने का नाम है, एक्सेप्ट करने का नाम है, अकीदा इख्तियार करने का नाम है, तस्दीक करने का नाम है, चाहे समझ में आए चाहे ना आए। मुखबिर सादिक की खबर की बुनियाद पर, सच बोलने वाले की खबर की बुनियाद पर तस्दीक करने का नाम ईमान होता है। समझ में आने के बाद तस्दीक करने का नाम ईमान नहीं होता, समझ से ताल्लुक नहीं होता उसका। मुखबिर के ऊपर यकीन से ताल्लुक होता है, खबर देने वाला उस पर एतमाद है आपको या नहीं है, खबर देने वाला अल्लाह है, खबर देने वाले अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लज़ीना युमिनून बिलगैब का मतलब यही है जो कुरान पाक के शुरू में है कि जो गैब पर ईमान लाते हैं। गैब की जो बात होती है वो अनसीन होती है, और जो वाला न सिर्फ ये कि वो अनसीन होती है, उसका समझ में आना भी ज़रूरी नहीं होता है, अंडरस्टूड भी नहीं होती, मगर चूँकि बताने वाला सच्चा है लिहाजा बात सच्ची है, मैं मानता हूँ, ये ईमान इसको कहते हैं सब। इसीलिए आप सच्चे हैं ये पहले साबित किया गया है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सादिक और अमीन होना पहले इसको साबित किया गया है, इसका एतमाद कायम कराया गया है। तुम मेरे बारे में क्या कहते हो साहबा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग का हुक्म हुआ तो आपने जमा करके सबसे पहले ये पूछा कि मेरे बारे में तुम्हारी राय क्या है। तो उन्होंने कहा कि माजर रबना का करीबन, हमने आपको कभी झूठ पर तजुर्बा नहीं किया, आप तो सादिक हैं, आप तो अमीन हैं, जा आफीना सादिकुल अमीन, वह सादिकुल अमीन आ गए। पूरे मक्के में सादिकुल अमीन की हैसियत से आप जाने जाते थे, जब आप खबर दें तो वह खबर ऐसी होगी कि जिसका ताल्लुक सिर्फ इनकी तस्दीक पर, इनके एतमाद पर कबूल करने की थी। तो ईमानियात में जो है वो मान लेना होता है अकायद, मानने के दर्जे हैं, फिर मानने के लेवल्स हैं। मानने के दर्जे कुछ इस टाइप के हैं कि एक है सतही तरीके पर मान लेना, और एक है उसको इस तरीके से मानना कि वो कारे कल्ब में, दिल की गहराई के अंदर इस तरह से बैठे कि उसके तकाजे के खिलाफ अमल करने की हिम्मत ना हो। उठाएंगे तो बंद हो जाएगा, चलो ठीक है, कुछ थोड़ी देर में। इसलिए ये बात आजकल बहुत कही जा रही है, सुना भी होगा आपने, कि ईमान जो है ना ये सिर्फ मानना ही नहीं होता, इसको बनाना भी होता है। देखो ये बंद हो गया शायद, हम लोग ये समझते हैं कि सब अहमदु बिल्ला ही कमा हुआ भी असमा ही व सिफात ही, यही कि आमंतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी व क़द्र खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह तआला वल बाथ बाद अल मौत, इसका नाम, इसको अगर एक आदमी मान लेता है तो ये ईमान वाला हो जाता है। मान लेने में वाकई ईमान वाला हो जाता है, लेकिन वो ईमान बना हुआ नहीं होता, बना हुआ होने के लिए मेहनत चाहिए, उसके बगैर बना हुआ नहीं हो सकता। आज के मुसलमान का जो प्रॉब्लम है, बहुत से प्रॉब्लम है उनके, कि किसी, इसलिए कोई एक उनवान उसका नहीं दे सकते हम, एक उनवान दिए तो फिर वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो मिसाल के तौर पर सात बातों पर ईमान लाने से, मानने से सात बातों पर आदमी ईमान में दाखिल होता है, सिर्फ एक बात के मानने से नहीं दाखिल होता, सात बातों को मानना होता है, और सातों में से किसी एक को भी डैमेज करने से ईमान टूट जाता है। ईमान ऐसे ही टूटता है जैसे वजू टूटता है, जैसे नमाज टूटती है। बहुत कम लोग इधर ध्यान देते हैं। अब ईमान कहाँ से टूटेगा? एक आदमी ईमान टूट चुका होता है और उसको पता भी नहीं चल रहा होता है। जैसे एक आदमी की नमाज टूट गई वजू टूटने की वजह से, और वो जना उठक बैठक कर रहा है सबके साथ, रुकू में भी है सीधे में भी है, तो वो भी समझ रहा है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, दूसरे लोग भी देख रहे हैं कि ये नमाज पढ़ रहा है, लेकिन वो तो पढ़ नहीं रहा। वो तो नमाज तो उसकी कभी का टूट चुकी है, चूंकि नमाज टूटने वाला काम उससे हो चुका है। कोई खून निकल गया उसके जिस्म से, जैसे कहीं सी बात हो गई। अल्लाह पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के रसूलों पर, वो ईमान मुफस्सल में हम लोग जो याद किए हुए हैं, तकदीर पर, आखिरत के दिन पर, और बास बादल मौत पर। ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, बास बादल मौत और आखिरत का दिन। कोई बात अगर आदमी ऐसा ऐसी बोले या ऐसी इख्तियार करे जिसमें से जिसमें कि इन बातों में से किसी एक बात का झुठलाना लाजिम आ जाए तो टूट जाएगा। जैसे अगर कोई आदमी कहता मैं नमाज को नहीं मानता और मुसलमान भी है, ये क्या लेके बैठा है तुम लोगों ने नमाज रोज़ा? बहुत बोलते थे बाज मरतबा बाद लोग बोल देते, वो काफिर हो जाता बंदा। अरे वही कलमा पढ़ रहा है तो वो काफिर कैसा है? सारा परेशानी लोगों को खलजा नहीं होता है, वे कादियानी है उनको काफिर बोलते हैं, वो कलमा पढ़ते हैं उनको काफिर क्यों बोलते हो? भैया लोगों को ये खलजान होता है, बात पूरी मालूम नहीं है। जो आदमी कलमा तो पढ़ रहा है लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबीयीन नहीं मानता, आखिरी नबी नहीं मानता, तो आखिरी नबी नहीं मानने से कुरान पर ईमान टूट गया। कुरान झूठ, कुरान को उसने झूठा मान लिया, गलत मान लिया। कुरान तो है, कुरान में तो है कि आप आखिरी नबी, हदीस में तो है कि आप आखिरी नबी हैं। तो बावजूद कलमा पढ़ने के उसने कलमे को टूटने वाला काम किया, इसलिए ईमान बुरो को टूट गया। ऐसा होता नमाज नहीं मानता एक आदमी, तो बावजूद कलमा पढ़ने के एक आदमी ने कुरान को झुठला दिया। कुरान कह रहा इन सलात कान थे किताब मौको था, ये कह रहे मैं नहीं मानता। एक मरतबा हम ऐसी मुलाकातों के लिए गए थे गश्त में, जमात में थे, एक साहब कहने लगे अरे यार हम नमाज रोज़े को जो है ना इंडिया में छोड़ के आए थे, आप लोग फिर उठा के ले आए। हम 90s की बात बोल रहा हूँ, अब तो नहीं रही है वैसी, ऐसी बातें करने वाले लोग बहुत कम हो गए हैं, इल्ला माशाल्लाह रह गए हैं, लेकिन हैं अभी भी बहुत से। अभी 2 साल पहले 3 साल पहले जो है वहाँ जाना हुआ था इंडियाना में, वहाँ एक साहब के पास गए। बड़े अजीब अजीब तजुर्बे होते हैं लोगों से मुलाकातों के लिए जब आप जाते हैं दीन की नस्बत पर। एक साहब कहने लगे देखो मौल साहब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, बुनियाद इस्लाम वाला खमसन, शहादत देना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, हज करना, रोज़ा रखना, बुनियाद इस्लाम वाला खमसन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। ये 5 चीज़ें मैं मानता हूँ और ये 5 चीज़ें मैं करता हूँ, छठी चीज़ कोई मैं मानता नहीं, छठी चीज़ मैं कोई करना चाहता नहीं, अब आप मेरे को कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो। अब तबलीग वाला तो जाहिर है कि पूरी दीन की बात करने को जा रहा होता है। मैंने कहा यार इस बंदे को कैसे समझाए, बात तो सही, हदीस शरीफ तो सही है सुना रहा है, हदीस का हवाला तो सही है लेकिन बात तो सही नहीं बोल रहा है। मैंने उनसे कहा कि आप पोर खा लेते हैं? कैसे आदमी है, मैं मुसलमान हूँ, पोर क्यों खाऊंगा भाई? मैंने कहा ये 5 में तो नहीं है, जिन 5 चीज़ों का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें तो नहीं है, बुनी अली सलाम वाला काम से चाह देते कहने क्यों हुआ? दुनिया है, मुसलमान है, मुसलमान नहीं कहता पता ही आपको आ रहा है। मैंने कहा फिर कहाँ से बोल रहे हैं आप नहीं कहता बोल के? खामोश होगा, उसको समझ में नहीं आई बात कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फिर मैंने उनसे अर्ज किया कि आपके पास शादी में तमीज़ है हलाल हराम की, कि किससे शादी करना जायज़ है किससे पास जायज़ नहीं, कौन सी औरत से कर सकते कौन सी बेटी से नहीं कर सकते, औरत से कर सकते बहन से नहीं कर सकते, फला से कर सकते, या कि आप सबसे करने के जायज़ होने के खायल हैं, सबसे हो सकती है शादी? क्या आदमी है यार, कैसे आदमी हो यार तुम? मैंने कहा ये 5 में तो नहीं, आप जो बोल रहे थे ये पांच में, मैं पांच मानता हूँ, पांच से जटा नहीं मानता। ये चार छह चीजें मैंने ऐसी उस वक्त अल्लाह तआला ने जहन में डाली हार्दिक की, तब जाके उनका जहन खुला कि नहीं ये पांच पे ईमान लाने का मतलब एक और है, एक बात है। दीन तो पूरा मानना पड़ता है, तस्दीक में आ जाओ आप, रसूल को ईमान कहते हैं सर, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए उसको मानना होता है। खैर, इन सात बातों में से एक बात पर भी हमारा बना हुआ नहीं है ईमान। मसला ये है, मसला ईमान के बनने का है। मिसाल के तौर पर अर्ज करना यह है कि अगर आखिरत को हम मानते हैं तो आखिरत को मानना है, आखिरत के पर ईमान बना हुआ होना है। आखिरत पर ईमान बने हुए का मतलब ये होता है कि मैं अपने हर अमल से पहले ये देखूं कि आखिरत में इसका क्या रिजल्ट है। अगर आखिरत में ये नुकसान पहुंचाने वाला है तो मैं नहीं करूंगा, चाहे दुनिया में वो नफा पहुंचाए या नुकसान पहुंचाए, इससे मुझे कोई बहस ही नहीं। ईमान बिल आखिरत का मतलब ये है, बास बादल मौत का मतलब तो ये है, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर मेरा ईमान है, हिसाब किताब पर मेरा ईमान है, अच्छे अमल के अच्छा बदला, बुरे अमल का बुरा बदला, इस पर मैं यकीन रखता हूँ। तो बना हुआ जो होगा तो मेरे हर अमल में मैं ये सो, मेरे हर बोल में, मेरे हर अमल में ये होगा कि इसका नतीजा क्या है कल क़यामत में। अगर वो फ़ायदा है उसका तो मैं करूँगा, चाहे यहाँ फ़ायदा हो या नुकसान हो, और अगर नुकसान है तो मैं नहीं करूँगा, चाहे यहाँ फ़ायदा हो या नुकसान हो। ऐसे तकदीर पर ईमान है, अपना ईमान बना हुआ नहीं है, हम मानते हैं कि तकदीर है बल्कि, लेकिन जिसका तकदीर पर ईमान होता है खसूसियत ये होती है कि हालात से वो कभी परेशान नहीं होता। तकदीर पर ईमान की खसूसियत तसल्ली है। कुरान पाक में है कि ऐसा आदमी बिल्कुल गम से ऊपर हो जाता है, चाहे कितने ही गम वाले परेशानी के हालात आएँ उसको परेशानी नहीं होगी, डिप्रेशन में नहीं जाएगा। तकदीर पर ईमान वाला डिप्रेशन का सवाल ही नहीं पैदा होता। तय है एक बात, वलकद्र खैर ही व शर ही मिन अल्लाह ताला, अच्छा बुरा अल्लाह की तरफ से, वो हकीम है, हिकमत के तौर पर इम्तिहानन उन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं। डिज़ाइन ही ऐसा किया है कि एक आदमी को ख़िलाफ़ तबीयत भी चीज़ें पेश आएंगी और मुआफ़िक़ तबीयत चीज़ें भी पेश आएंगी। ख़िलाफ़ तबीयत चीज़ों से इम्तिहान सब्र का है, मुआफ़िक़ तबीयत चीज़ों से इम्तिहान शुक्र का है। सब्र भी ईमान की सिफत है, शुक्र भी ईमान की सिफत है, ईमान की सिफतों का टेस्ट है। जिसके बाद ईमान होगा उसको जन्नत मिलने वाली है। तो ईमान है या नहीं है वो टेस्ट से उसके अमल से होगा, इम्तिहान से उसके इम्तिहान हो, इम्तिहान लेने से सामने आएगी वो चीज़। और ये इम्तिहान प्रैक्टिकल वाला है, अकीदे वाला नहीं होता खाली, क्योंकि सब्र जो है ना ये बोलने की चीज़ नहीं होती ना, सुनने की चीज़ है, यह बरतने की चीज़ है ये तो। और वो भी ममारसत चाहिए उसकी। ममारसत का मतलब, अगर एक आध मरतबा कोई आप मेहनत से काम कर डाले तो उसका नाम सब्र नहीं होता, एक आध मरतबा बर्दाश्त दिखा दे तो उसका नाम सब्र नहीं होता। सब्र तो एक सिफत है जो करते करते, जब जैसे आदमी ड्राइविंग में पुख्ता होता है, जैसे टैपिंग में पुख्ता होता है, वैसे सब्र में पुख्ता होता है एक आदमी। शुक्र जो है ये कोई बोलने सुनने की चीज़ नहीं होती, उसूलन समझने के लिए तो बोलना सुनना पड़ता है, लेकिन ये बरतने की चीज़ है, ये इसका अमल ही साबिका है। तो तकदीर पर ईमान वाला जो है, अच्छे हालात और बुरे हालात दोनों में नज़र उसकी अल्लाह पर होती है। लिखा लाता सब वाला माफा तक हूँ वाला तफराहो भी माँ तक हूँ, तकदीर हमने इसलिए तुमको बता दी है कि ताकि जो तुमसे फौत हो जाए उस पर तुमको अफसोस ना हो, और जो तुम्हें मिल जाए उसमें तुम्हें अकड़ ना हो। चार पैसे मिल गए, डिग्री मिल गई, हैसियत हासिल हो गई, राहत मिल गई, ये काम हो गया, वो बस साथ में आसमान पे दिमाग चले गए। अरे भाई एक मिनट में ख़त्म हो जा सकता है, आप किधर हैं भाई? तकदीर का मतलब ये है कि जिसने दिया वो ले भी सकता है, तुम्हारा होता ही नहीं, वो तो दूसरे का है जो अमानतन तुम्हारे पास है, और वो जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर, तो जिम्मेदारी से तो घबराने की चीज़ होती है। तो अगर कुछ मिल गया तो उसमें अकड़ बाकी न रहे, और अगर कुछ न मिले, ख़त्म हो जाए, फौत हो जाए, मिस हो जाए, उस पर अफसोस ना हो। नहीं तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हालात में लिखा है कि एक मरतबा, क्योंकि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, शिप्स चलती थी उनकी, तो एक जहाज, पानी के जहाज के बारे में उनको पता चला कि वो पानी में डूब गया, भंवर कश्ती भंवर में आ गई। तो जिसने इत्तला दी वो उसका बयान यह है कि उसने कहा, हजरत ने थोड़ा सा नीचे देखा चंद सेकंडों के लिए, फिर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। उसको भी ताज्जुब हुआ कि ये कोई अल्हम्दुलिल्लाह का वक्त थोड़ी है, तो इन्ना लिल्लाह का वक्त है, मगर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह का। खुदा की करनी यह है कि चंद दिनों के बाद फिर आपको ये इत्तला मिली कि कश्ती भंवर में तो आई थी लेकिन डूबी नहीं, लेकिन भंवर में चूंकि आते हुए देखा था लोगों ने तो इसलिए उसको डूबने से बयान कर दिया था, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह ताला सलामती के साथ में वो साहिल पर आ गए। तो हजरत फिर जो है ना थोड़ा सा नीचे एक चंद सेकंडों के लिए गर्दन अपनी झुकाए और फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके जो खुद्दाम थे उन्होंने कहा कि हज़रत ये अल्हम्दुलिल्लाह तो समझ में आ रहा कि आपका सामान बच गया, कश्ती बच गई, उसमें तिजारत का सामान था हज़ारों का वो बच गया आपका, लेकिन वो जो जब कश्ती के डूबने पर आपको खबर दी गई थी तो आपने इन्ना लिल्लाह के बजाय अल्हम्दुलिल्लाह कहा था, वो नहीं समझ में आया। तो हज़रत ने फरमाया कि भाई ना मैंने कश्ती के डूबने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा ना कश्ती के बचने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा, इन दोनों खबरों पर मेरे दिल के गैर मुतासर होने पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कहा कि जब मुझे ये सदमे की इत्तला मिली कि मेरे साथ ये हादसा हुआ है तो मैंने सोचा कि मेरे दिल के अंदर कुछ तब्दीली तो नहीं आई इससे, तो मेरे दिल ने इत्मीनान का इजहार किया कि मेरी तो थी नहीं चीज़, वो तो उनकी थी, अब उनकी मर्जी है पानी के ऊपर रखें या पानी के नीचे रखें, माल तो मेरा नहीं था, वो माल तो अल्लाह का था, वो हर माल अल्लाह का होता है, हम भी अल्लाह के होते हैं, इन्ना लिल्लाह का मतलब भी वही होता है। तो बोले मैंने ये देखा कि पानी के अंदर कश्ती के डूब जाने की इत्तला पर अपने दिल को मैंने गैर मुतगैर पाया, कोई तब्दीली नहीं आई इसमें, कोई तासुर नहीं आया, कोई सदमा नहीं हुआ मुझे, तो इस ईमान की कैफियत पर कि ये ईमान के कमाल की निशानी, तकदीर पर ईमान बने हुए होने की, कामिल बने हुए होने की निशानी होती है। तो मैं उस तासुर की वजह से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि मेरे दिल में कोई तासुर नहीं। अच्छा, जब मुझे ये इत्तला मिली कि सामान पूरा का पूरा सही सलामत पहुंच गया है साहिल पर, तो फिर मैं अपनी तरफ मुतवज्जे हुआ, तो मैंने देखा उससे क्या दिल पर असर है, फिर भी कोई असर मेरे दिल में नहीं आया। वो ठीक है, उनका सामान है, डुबाने के बजाय उन्हें तिरा दिया, वहाँ रखने के बजाय बाहर रख दिया। आप सामान घर में लाते हो, कुछ सामान को आप जो है किसी किसी ड्रार में रखते हो, किसी को किसी अलमारी में रखते हो, किसी को किसी अलमारी में रखते हो, पूरी दुनिया अल्लाह पाक की है, सामान पूरा उनका है, माल पूरा उनका है, जहाँ चाहे रखें, आपके पास रखें, मेरे पास रखें, पानी में रखें, पानी के ऊपर रखें। तकदीर पर ईमान एक लेवल ये भी है, मैं ये बता रहा था, एक अपना भी है, हम भी तकदीर पर ईमान रखते हैं माशाल्लाह से, तभी तो मुसलमान है, मगर ये ईमान किधर और ये ईमान किधर। तो तकदीर पर ईमान बना हुआ होना अलग है, किताब पर ईमान बना हुआ होना, रसूल पर ईमान बना हुआ होना, रसूल पर ईमान लाते हैं हम, आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन यह कि ये बना हुआ नहीं है ना, रसूल पर ईमान बना हुआ जब होता है तो आदमी रसूल में फना होता है, मतलब अपनी मर्जी ख़त्म कर देता है रसूल के सामने, अपने हर हरकत और सुकून में, हर एक्शन में। रसूल पर ईमान जिसका बना हुआ होगा, रसूल के तरीक़े के सामने अपना तरीक़ा ख़त्म, उनकी सकाफत और तहजीब के सामने अपनी सकाफत तहजीब ख़त्म, उनकी मर्ज़ी के सामने अपनी मर्ज़ी ख़त्म, वो बना हुआ होना है। तो खैर, मैं जो बात अर्ज़ करना चाह रहा था वो ये था कि एक सवाल किया हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ईमानियात का, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मानो, ये मानना, ये मानना, ये मानना, ये मानना, ये ईमान होता है। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सवाल किया इस्लाम का कि इस्लाम क्या है, तो फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये इस्लाम होता है। तो जब ये दोनों एक साथ बोले जाते हैं तो ईमान के लिए मानने का लफ्ज़ है और इस्लाम के लिए करने का लफ्ज़ है। इस्लाम इनकियाद का नाम है, सरेंडरिंग का नाम है, बात पर अमल करने का नाम है, मानना इस तरीके से कि उस पर आदमी अमल भी कर रहा हो और अमल से उसकी तस्दीक कर रहा हो, झुटला ना रहा हो अमल से। फिर उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा कि एहसान क्या है, मल एहसान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दिया। और फिर आखिर में चौथा सवाल, मैं मल एहसान की बात अर्ज करूँगा थोड़ी सी अगर मौका मिला तो, चौथा सवाल किया कि क़यामत के बारे में आप बताइए, अखबिर ने अनिस्सा, आपने फरमाया कि भाई ये तो ऐसा सवाल है कि क़यामत ठीक कब आएगी, ये तो ये कि सवाल करने वाला और सवाल किया जाने वाला हमेशा बराबर रहेंगे, मल मसूल वाना बे आलम मिन साहिल, मसूल जिससे पूछा जा रहा है, साहिल जो पूछने वाला है, जो पूछने वाला है वो, जो पूछा जाएगा वो, दोनों इसमें बराबर हैं, मुझे भी नहीं पता। अखबर ने आना अमारा दिया, पर मैं कहते फिर आप ऐसा कीजिए कि उसकी जो निशानियाँ हैं वो बता दीजिए। तो फिर आपने निशानियाँ बताई, अनतलमतरबा व अंतरफ़ात अलहरात अलआल तरिया आशा तवलफ़िलबुनियान, बकरियों के चराने वाले, नंगे पैर फिरने वाले, आप उनको देखेंगे कि वो इमारत लंबी लंबी बनाने के अंदर मुकाबले करेंगे। दुबई जाके देख लो, सऊदीया जाके देख लो, इधर जाके देख लो, ये भी मिलेगा आपको। ये बकरियों के चरवाहे जो है, ये ऊँटों के चरवाहे जो है, आपने वो निशानियाँ बयान फरमाई। तो ये जो तीसरी बात आपने फरमाई, अच्छा ये चौथी, चारों बातें हो जाने के बाद में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जिब्राइल थे ये और आए थे तुमको तुम्हारा दीन सिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि तुम्हारे दीन में है क्या। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने से 2 महीने पहले का किस्सा है। पूरा दीन नाजिल हो जाने के बाद उसकी समरी सुनाने के लिए आए थे कि भाई उसका सत्य ये है, खुलासा ये है, जौहर ये है। हम लोगों के लिए जो हम तरीन चीज़ है कि अल्लाह के शुक्र है ईमानियात क्या है वो मालूम है, चाहे वो बनेंगे नहीं हमारे पास, लेकिन हम जानते हैं। हम लोग इस्लामियात क्या है वो भी मालूम है, वो भी जानते हैं हम लोग, लेकिन ये इस तीसरी चीज़ के बारे में ध्यान ही नहीं देते हैं। जबकि बड़े होने, बड़े लोगों के वास्ते असल मसला यही है। जब आदमी बड़ा हो चुका है, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि असल में 40 साल के बाद का काम है असल, उसके बाद आदमी को इसकी सबसे ज़्यादा फिक्र हो जानी पड़ती है। और वो फरमाया कि अगर 40 साल पे पहुँच कर भी इस फिक्र में आदमी नहीं पड़ गया तो वो बीमार है, वो रूहानी बीमार है। जैसे शादी की उम्र होने के बाद भी शादी का तकाजा ना हो तो वो आदमी बीमार है। 40 साल का हो गया फिर भी एहसान के बारे में आपको कुछ फिक्र ही नहीं पड़ी कि एहसान आया नहीं आया मेरे अंदर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान को बताया, एहसान के बारे में आपने ये बताया कि एहसान में एक कैफियत होती है एक अमल की क्वालिटी वाली, आदमी के ईमान में और ईमान के अमल में दोनों में ख़ास किस्म की क्वालिटी आने का नाम एहसान है। वो क्या है? वो ये है कि मानने वाली चीज़ हो या करने वाली चीज़ हो, आप अल्लाह के सामने हाजिर हो जाए। अंताबुदल्ला का अन्न का तरह, इबादत करो अल्लाह की गोया कि तुम अल्लाह पाक को देख रहे हो। फिर फरमाया कि फ़ैलम तकुन तरा हो फैन हो जरा का, क्योंकि अगरचे के तुम नहीं देख रहे हो लेकिन वो तो तुमको देख रहे हैं। जब वो तुमको देख रहे हैं तो यह समझना बहुत आसान है कि गोया तुम उनको देख रहे हो। पहले समझाना उतना आसान नहीं होता था, समझते फिर भी थे लोग, लेकिन जरा सा तो इशराकियत आने के बाद, रूहानियत आने के बाद ज़्यादा समझते थे। आजकल तो हिस्सी चीज़ें इतनी ज़्यादा सामने आ गई हैं कि बहुत ही आसान हो जाता है समझना। अभी जितने ऑफिस होते हैं, आमतौर पर बॉसेस के जो ऑफिस होते हैं, कंपनी का जो ओनर है, बॉस है, जिम्मेदार है, उसके जो ऑफिस के जो गिलासेस हैं उनकी एक खसूसियत होती है ज़्यादातर, वो है कि वो अंदर से बाहर नज़र आता रहता है लेकिन बाहर से अंदर का नज़र नहीं आता। तो अगर कंपनी इस टाइप की है कि ऑफिस के ऑफिस जो है ना आप कंपनी के बीच में है और वर्कर्स जो है वो नज़र आ रहे हैं कंपनी के ऑफिस के अंदर से, तो उसकी शक्ल ये होती है कि बॉस अंदर हैं और अंदर से उनको बाहर नज़र आ रहा है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। बाहर वालों को अंदर से नज़र, अंदर का नज़र नहीं आ रहा होता है और ये जानते हैं कि बॉस है अंदर। तो हर आदमी के काम की शान ये होती है कि वो ऐसे अंदाज में कर रहा होता है कि गोया के वो बॉस को देख रहा है, क्योंकि बॉस तो उसको देख रहा है, उसके जहन में ये है कि उसका बॉस तो उसको देख रहा है, लिहाजा बॉस मुझे ये काम करता हुआ देखेगा। इस पर आ जाओ, अगर आपको बैठने की आदत नहीं है इस पर आ जाओ आराम से ज़रा। तो चूंकि अगर उसको ये एहसास होता है कि हो सकता है मुझे ही देख रहा हो, और अगर मैं वैसे काम नहीं करूँगा जैसे उनको पसंद है तो फिर मुझे फायर कर देंगे। तो फिर पूरी मुस्तैदी से वक्त ज़ाय किए बगैर काम को बेहतर तरीके पर आप पूरे सलीके से पूरे आदाब से वैसे अंजाम पाना है वो चीज़। तो हक तआला शानहू जो है ना हमारे साथ में ऐसा ही मामला रखते हैं, अल्लाह पाक के सामने होती है पूरी मखलूक, हम भी अल्लाह पाक के सामने हैं। तो जब अल्लाह तबारक व तआला के हम सामने हैं तो हर हर अमल में इसी इस्तेहजार के साथ अमल होना है। अंताबुदल्लाह का मतलब हम लोग इसको सीधा नमाज पे लगाते हैं, और नमाज पे लगाना ही चाहिए कि नमाज में सिफत एहसान आए, लेकिन इबादत जो है ना वो सिर्फ नमाज नहीं है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं दीन की, दीन की बात सुन रहे हैं, दीन की बात सुना रहे हैं, इसमें भी वही तो सिफत होनी चाहिए। जब इबादत ऐसी होना है तो इबादत में यही ध्यान होने का है। जिक्र करता है आदमी, तस्बीह पढ़ता है, क्या आदमी सुभान अल्लाह पढ़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है, अल्लाह अकबर पढ़ रहा है, दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, इस्तगफार पढ़ रहा है, उसके ध्यान में होना ज़रूरी है कि भाई अल्लाह तबारक व ताला मुझे देख रहे हैं, क्योंकि वो तो देख ही रहे हैं और वो मैं अल्लाह तबारक व ताला को देख रहा हूँ। तो जो उसका अदब है, जो उसमें एहतमाम है, और जो उसमें आजिज़ी है, और जो उसमें अल्लाह तबारक व ताला की आज़मत है, वो ध्यान में होना चाहिए। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया ना कि दरजुमा तस्बीह और दर्दिल गौखर, इंचुनी तस्बीह कह दार दसर, जुबान पर आपके तस्बीह हो, दिल में गाय भैंस हो, तो इस तस्बीह का क्या फ़ायदा आपको मिलने वाला है। दर जुबान तस्बीह हो दर दिल गाओखर, ई चुनी तस्बीह कह दार दसर। हर बुजुर्गों ने लोगों की मायूसी ख़त्म करने है और उनकी इसलाह सही करने के इसलाह करने के लिए, ताकि हौसला शिकनी ना हो और आदमी ये सोचे कि भाई मैं तो अब कर नहीं सकता वो ऐसी तस्बीह, लिहाजा तस्बीह ही ना पढ़ूँ, तातुल पे आ जाता है, उसके लिए ये फरमाया कि दरजुमा तस्बीह हो दर दिल गाओकर ई चुनी तस्बीह हम दारद असर, कि जुबान पे आदमी के तस्बीह हो और दिल में गाओकर हो, ये तस्बीह भी काम करती है, ये भी काम करती है। क्यों? इस वास्ते कि जुबान का तो एक अमल हो गया ना, दिल का नहीं हुआ सही है, लेकिन जुबान तो ताअत में लग गई, उसका तो सवाब मिलेगा उस बंदे को, वैसा असर नहीं होगा उसका, लेकिन ये कि होगा, मगर हकीकत तो वही है जो पहले शायर ने कही है कि आदमी जब तस्बीह पढ़ रहा हूँ, कुरान पाक की तिलावत है इबादत है, नौकरी करना है इबादत है, जो आदमी जॉब पर होता है अगर वो हलाल जॉब कर रहा है और उसमें हराम जॉब नहीं है कोई, तो वो इबादत है, उसमें यही इस्तेहजार होना है, अंताबुदल्ला का अन्न का तरह। लोग ये समझ मस्जिद में आ गए नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज में ये ध्यान होना है, ये नहीं, जब ऑफिस में होना है ये ध्यान, जॉब पर होना है ये ध्यान। इसीलिए जॉब वैसे ही होगा जैसे अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं, वैसे ही होगा जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है जॉब के उसूलों को। ये अजीर है, आप अजीर ख़ास और अजीर मुश्तरक के जो अहकाम है वह मलहूज रखना पड़ता है। जो आदमी जॉब करता है वह अजीर होता है। अजीर की दो किस्में होती हैं, अजीर ख़ास अजीर मुश्तरक। अजीर ख़ास जो होता है वो काम का ज़िम्मेदार होता है, अजीर मुश्तरक जो होता है वो टाइम का ज़िम्मेदार होता है। ये फ़र्क है दोनों में। आमतौर पर अजीर मुश्तरक में आजकल हमारे पास जो है ना वो टाइम के साथ काम लगा हुआ है, और बाज़ जगह पर ऐसा होता है वो टाइम लगा हुआ नहीं होता। अब जैसे टेलरिंग है, किसी को आपने कपड़े सीने के लिए दिए हैं वो अजीर ख़ास है, वो गाड़ी बनाने के लिए आपने दिए हैं वो अजीर ख़ास है, उसमें टाइम नहीं रहता कि आपको 2 घंटे में दे देना है, 3 घंटे में देना है। उन्हें बोलेंगे भाई मैं आज खोलूँगा शाम में, आप कल फ़ोन कर लो, बन गई तो फिर आप आके ले लेके चले जाओ, या जब बन जाएगी जब आपको दे देंगे, जब सामान हो जाएगा जब आएंगे, सामान आना है इसका, इसका ये बदलना है, बम्पर ऐसा हो गया, फलां ऐसा हो गया, फलां ऐसा हो गया, फ़िल्टर ख़राब हो गया, फ़िल्टर आना है, ये सामान इसमें लगेगा, जब ये बनेगा तो आप ले लेना, उसमें टाइम मुकर्रर नहीं होता है। इसी वजह से वो आगे पीछे होती है चीज़ें, टेलरिंग के लिए टाइम मुकर्रर नहीं होता, काम होता है उसमें, आपको ये वास्कोट सीना है, कुर्ता सीना है, पैजामा सीना है, शेरवानी सीना है, जो भी, इसको अजीर ख़ास कहते हैं। अजीर मुश्तरक जैसे कि आमतौर पर हम लोग जॉब करते हैं, सुबह 6 बजे से शाम में 6 बजे तक, 5 बजे से 5 बजे तक, 4 बजे, जो भी है, उसमें काम भी होता है, उसके मसाइल है पूरे इस्लाम में, उन मसाइल का ध्यान रखना ही अल्लाह तबा, उन मसाइल को ध्यान रखना इस इस्तेहजार के साथ कि मैं अल्लाह की बंदगी कर रहा हूँ ये, और अल्लाह तबारक व ताला मुझे देख रहे हैं, ये वस्फ होने का ईमान वाले में। ईमान वाले की जॉब में गैर ईमान वाले की जॉब में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। ईमान वाले की जॉब में दयानतदारी होती है, अमानतदारी होती है, एहसास ज़िम्मेदारी होती है, मुस्तैदी होती है, काम पूरा होता है। मुतालिका काम के अलावा दूसरा काम नहीं करता है। उलमाए किराम ने जॉब के दौरान नमाज का वक्त आने पर नवाफिल पढ़ने को मना लिखा है, नफिल नहीं पढ़ सकते। जॉब का टाइम है आपका, अगर आपका बॉस देख लेगा कि आप काम छोड़ के नफिल नमाज में लगे हुए हैं, मैं तो नमाज पढ़ रहा था, बॉस मेरा मुसलमान है, मुसलमान रहूँगा, कुछ भी रहूँ, नहीं पढ़ सकते, जॉब का वक्त है। बीवी बच्चों के साथ अपने घर वालों के साथ जब आदमी बात कर रहा हो, बीवी अपने हस्बैंड के साथ जब बात कर रही हो, हस्बैंड अपनी बीवी के साथ जब बात कर रहा हो, अगर ये ध्यान हो कि अल्लाह तबारक व ताला सामने है, तो कितनी तमीज़ आ जाएगी बातचीत में, सलीका आ जाएगा, लिहाज आ जाएगा, अदब आएगा, इज्जत देने का मज़मून आएगा, बेइज्जत नहीं करेगा आदमी। औलाद अपनी माँ बाप के साथ बात करेगी तो कितने अदब से बात करेगी, कितने एहतराम से बात करेगी, कैसे नज़रें झुका के बात करेगी, अगर उसको ये ध्यान हो कि अल्लाह तबारक व ताला देख रहे हैं। क्योंकि माँ बाप का जो मकाम है अल्लाह ताला की बंदगी के बाद में, सबसे बड़ा हक माँ बाप का ही है। वक़ा रब का अल्लाह ताबुदू इल्लाया अबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन पे एतराज़ कर रहे हैं, वालिदैन से शिकायत कर रहे हैं, वालिदैन तुम हमारे साथ क्या करे, तुम हमारे साथ ये करे, तुम्हारा बिल्कुल अब बेवकूफ़ी की हरकत आदमी करता रहता है, पता ही नहीं है उसको कि वो क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है। ये सब क्या है, सिफत एहसान नहीं सीखने से होता है। तो हमारे हर हर अमल में ये चीज़ होना है, पढ़ाने में, पढ़ने में, कमाने में, खर्च करने में, गरीबों पर सदका करने में, खैर खैरात करने में, सब चीज़ों में यही उसूल है। पकाने के दौरान, गृहस्थी के दौरान, सफाई के दौरान, बच्चों की तरबियत में, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मज़मून को मुस्तकिल जिक्र करके मुसलमानों को, उम्मत को, उम्मत के मर्दों को और उम्मत की औरतों को इस बात पर मुतवज्जह फरमाया है कि देखो हक तआला शानों के पास में ईमान और इस्लाम चाहिए, लेकिन ऐसा वाला चाहिए, वैसे आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग वाला नहीं चाहिए, वैसे ऐसा वाला चाहिए जिसमें एहसान हो। एहसान वाला इस्लाम और एहसान वाला ईमान ये मोतबर होता है, अल्लाह ताला के यहाँ ये मकबूल है। और ज़ाहिर है कि ये एक मश्क की चीज़ है, एक सीखने की चीज़ है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैज़ सोहबत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रात सहाबे किराम ईमान लाते ही हुजूर के असरात और अनवारात की वजह से ये सिफत के हामिल हो जाते थे। आपके इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद में सिफत एहसान जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गई लोगों से। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने शुरू किया लोगों को अपने पास ठहरा के, दो हफ्ते, तीन हफ्ते, किसी को एक हफ्ते, किसी को एक महीना ठहरा के सिफत एहसान की मशक कराने का। वहाँ से यह निज़ाम खानका ही शुरू हुआ। सो है हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, ये रबीब हैं हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की। उम्मे सलमा जो उम्मुल मोमिनीन हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा ताहिरा, उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इनके हज़रत हसन बसरी की जो अम्मी थी हज़रत उम्मे सलमा की खादिमा थी। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा जो हैं हज़रत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खादिमा थी। तो ये छोटे थे तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इनको गोल में ले लिया करती थी जब वो काम में रहती थी। हसन बसरी वो हैं सर, और 300 सहाबा किराम से इनकी मुलाकात है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इन्होंने इस्तिफादा किया है ज़्यादा, इसीलिए इनका सिलसिला जाके हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ही मिलता है और उन्हीं का इनको शागिर्द और खलीफा समझा जाता है। तो ये है वो चीज़। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले शुरू ज़रूरत महसूस की कि जब तक हुजूर के साथ लोग थे, सिफत एहसान की अलग से मश्क करने की ज़रूरत नहीं थी। जब आप पर्दा फरमा गए तो गफलत लोगों पर आना शुरू हुई और सिफत एहसान की मश्क करने की ज़रूरत आ गई। और चूँकि वह जदीदुल करीबुल अहद था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से वो ज़माना करीब था, तो इस और फिर लोगों में दीन गालिब था, तो वो कैफियत बहुत जल्दी आ जाती थी। बाद के दौर में जैसे जैसे बोध होता गया, जैसे जैसे गफलत के हालात और माहौल बदलता चला गया, तो ज़रूरत भी बढ़ती चली गई। अब धीरे धीरे होते होते हम जिस ज़माने में हैं, इस ज़माने में तो इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि उसके बगैर किसी आदमी के दीन पर होने का एतबार करना मुश्किल है कि इसके अंदर दीन है भी कि नहीं। इतनी दूर है हम लोग, सब करेंगे अल्लाह ही याद नहीं रहेगा, नमाज में भी अल्लाह ताला याद नहीं रहेगा, इमाम को काम पे लगा देंगे, हम अपने घर चले जाएंगे, आपके पीछे अल्लाह अकबर, आप नमाज़ पढ़ते रहो, हम आपके साथ एक्टिंग करते रहते हैं, जैसे आप करते रहेंगे वैसे एक्शन हमारा आपके साथ रहेगा, लेकिन मैं ज़रा घर पे जाके आ जाता हूँ, घर में लगाए अपने काम पे जाके आ रहे हैं, उससे मुलाकात करके आ रहे हैं, पाकिस्तान जाके आ रहे हैं, इंडिया जाके आ रहे हैं, किसी को कर्ज़ा दे रहे हैं, किसी से कर्ज़ा ले रहे हैं, कहीं ग्रोसरी ला रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। सिफत एहसान नाम की कोई चीज़ रही नहीं, ना नमाज में, ना रोज़े में, ना ज़कात में, ना हज में, ना तिलावत में, ना तस्बीह में। तो हमारे पास ईमान है, लेकिन कैसा ईमान है उसकी ज़रूरत है तरबियत की। हमारे पास इस्लाम है, लेकिन कैसा इस्लाम है उसकी तरबियत की ज़रूरत है। और ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी सहाबे किराम की निगरानी करते थे, उनको ये सिफत हासिल हो जाती थी। लेकिन मज़ीद इसमें पुख्तगी और इसके दर्जात तय कराने के वास्ते आप इस पर बाज़ाब्ता काम करते थे। और यही मतलब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो कुरान पाक में फरमाया गया, वही ज़क्की इनका, कि आप तालीम भी करते हैं इनकी, किताब की भी और हिकमत की, और उसके साथ आप तज़किया भी फरमाते हैं, तरबियत भी फरमाते हैं, ट्रेनिंग भी फरमाते हैं, ये आप फरमाते थे। आज इस वक्त जिस बात की इसकी ज़रूरत है, ख़ास तौर पर इस मुल्क में भी, वैसे तो पूरी दुनिया में, लेकिन इस मटेरियल वाली दुनिया में, मादी दुनिया में, जिसके अंदर मादा आदमी को इतना खींचता है अपनी तरफ कि रूहानियत से अवझली हो जाता है आदमी, रूहानियत उससे बिल्कुल पर्दे में चली जाती है, रूहानियत नाम की कोई चीज़ रहती नहीं है, उसका दिल हाज़िर नहीं है, उसका दिमाग हाज़िर नहीं है, उसमें कोई कैफियत नहीं है, उसमें कोई शौक़ नहीं, उसमें कोई अल्लाह ताला के साथ हब्बी नस्बत नहीं, अल्लाह के रसूल के साथ कोई हब्बी नस्बत नहीं, अल्लाह के नाम पर मर मिटने का कोई दाइया और जज्बा नहीं, अल्लाह को याद करने का कोई शौक़ नहीं, अल्लाह पाक के कलाम पाक की तिलावत का एक जायक़ा नहीं, कुछ नहीं। ऐसा आदमी फीका 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 हो गया है कि अहले कश्र में से हो गया। अल थानी रहमतुल्लाह फरमाया कि जब आदमी सिफत एहसान से दूर हो जाता है तो वो छिलका हो जाता है, कश्र छिलके को बोलते हैं। ईमान का छिलका लेके बैठे हुए अपन लोग, इस्लाम का छिलका लेके बैठे हुए, बादाम किधर है और छिलका हाथ में पकड़े हुए हैं, बादाम का छिलके से क्या होने वाला है, तरबूज का छिलका लेके बैठे हुए हैं, आम का छिलका लेके बैठे हुए हैं। हकीकत के साथ चाहिए, तो वो हकीकत के साथ के लिए थोड़ी सी मेहनत चाहिए, उस मेहनत के साथ में हमारे ईमान में जान आ जाएगी। वो ईमान जो है ना इस दुनिया में भी असरात और बरकत मरतब करेगा और असल आखिरत में काम आएगा, अल्लाह ताला की रज़ा और अल्लाह ताला की नज़दीकी का ये ज़रिया बनेगा। तो जहाँ सिफत एहसान हासिल होती है आम तौर पर वहाँ उस लाइन के भी कुछ मुख्तस लोग होते हैं, जैसे इल्म देने वाले मुख्तस लोग होते हैं, सिफत एहसान की मशक कराने वाले भी मुख्तस लोग होते हैं। मसले मसाइल जहाँ मालूम होंगे उसका एक दर्जा है, उसका एक लेवल है। तो यहाँ पर जहाँ पर नफ्स का तज़किया होगा, सिफत एहसान की मशकें जहाँ पर होंगी, पहले ज़माने में बड़ी मशकें होती थी। अलाउद्दीन साबिर कलियाली रहमतुल्लाह के बारे में मिलता है कि वो 11 साल उन्होंने एक जगह पर रहकर मुजाहिदा किया। सिर्फ अभी भी उनकी वो जगह बनी हुई है जहाँ पर लोग जाके देखते हैं, ज़ियारत करते हैं कि ये वो जगह थी जहाँ साबिर कलियाली क़याम फरमा होते थे, ठहरते थे। हम भी गए वहाँ पर, देखा है, बहुत बुजुर्गों ने जिनका ऐसे मामला ऐसे हाल था, 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल, 20-20 साल वो जो है लग जाते थे, मेहनत करते थे अल्लाह को याद करने में, सिफत एहसान बनाने में, यकसोई पैदा करने में, कॉन्सनट्रेशन लाने में, और अपने नफ्स को फना करने में, अपने नफ्स पर गालिब होने में, और नफ्स के अंदर की जो रज़ाइल होते हैं, हसद है, कीना है, रियाकारी है, खुदा जना वाला तकब्बुर है, बेहयाई है, बुजदिली है, बखालत है, कोई चीज़ कोई दकीका नहीं रहना चाहिए अंदर, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को पाक जगह पसंद है। और कल्ब में ये सब चीज़ें होंगी तो कल्ब जो है ना गंदा हो जाएगा, और गंदी चीज़ में आप ही कोई चीज़ नहीं पसंद करते तो अल्लाह ताला कैसे पसंद करेंगे कि अपनी मारिफत डालें, अपनी मोहब्बत डालें, अपना ताल्लुक डालें, अपना क़ुर्ब उसके अंदर रखें, अपना मस्कन बनाएं, अपने तजल्लियात का, अपना मस्कन से मुराद अपनी तजल्लियात का मस्कन। तो अल्लाह ताला शानो कल्ब को चाहते हैं कि वो बिल्कुल पाक साफ़ हो, और कल्ब को पाक साफ़ करना एक मेहनत चाहता है। और ये ऐसी चीज़ है, उलमा ने ये फरमाया कुरान हदीस की रोशनी में कि हम दुनिया में हैं इसलिए, जो लोग इसको छोड़ के दुनिया के जितने काम कर रहे हैं वो मकसद से दूर है, और अगर इसके साथ वो दुनिया के काम में हैं तो वो दुनिया का काम भी उनको नुकसान ज़्यादा नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगर इसको छोड़ के कर रहेंगे वो नुकसान पहुंचाएगा, वही मुसीबत बन जाएगा उनके लिए। और यही मतलब है दुनिया के धोखा देने का, दुनिया धोखा देगी। देखो दुनिया धोखा, कुरान पाक में जगह जगह है, उमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया जो है ना गुरूर का सामान है, धोखे का सामान है। तो भाई क्या धोखा दे रही है वो हमको, हमको नहीं मालूम है कि ये मकान है बोल के, ये खाना है, ये पानी है, ये जॉब है, ये गाड़ी है, इसमें धोखे की क्या बात है, दुनिया क्या धोखा दे रही है। दुनिया का धोखा यही लिखा है उलमा ने कि दुनिया में इतना इन्वॉल्व हो जाना, इतना बिजी हो जाना कि एक आदमी जिस काम के लिए इस दुनिया में रखा गया वही ना कर सके और मरने का टाइम आ जाए। जिस काम के लिए दुनिया में इंसान को रखा गया है, मर्द हो या औरत हो, वही ना सीख पाए और फिर उसके मरने का वक्त इस दुनिया से आ जाए, दुनिया से चला जाए वो, ये दुनिया ने उसको धोखा दे दिया। और आम तौर पर इस सिफत के साथ में जो दुनिया की मशगूलियत होती है, उसमें दुनिया का धोखा ये होता है कि दुनिया ने आपको इस्तेमाल कर लिया, आप समझ रहे हैं कि आपने दुनिया को इस्तेमाल कर लिया। हदीस शरीफ है, हदीस कुदसी है, या दुनिया इख्दिमी मन खदमकी, इख्दिमी मन खदमनी, ऐ दुनिया तू खादिम हो उसकी जो मेरी खिदमत में रहे, वस्तखदिमी मन खदमकी, और खादिम बना ले उसको जो तेरी खिदमत में रहे। तो दुनिया हमको घस ले रही है अपने लिए, हम समझ रहे हैं कि हम उसको अपने लिए इस्तेमाल कर ले रहे हैं, हालांकि दुनिया हमें इस्तेमाल करके फेंक दे रही है, अपनी संवारने के वास्ते, अपनी चमक दमक के लिए, अपनी रौनक के लिए, अपनी बहजत के लिए, अपनी खूबसूरती के लिए इंसानों को इस्तेमाल कर ले रही हूँ। हालांकि दुनिया को इस्तेमाल करके इंसान को खूबसूरत बनना था, इंसान को चमकना था, इंसान की रूहानियत को तरक्की देना था, इंसान का अल्लाह ताला से ताल्लुक बनना था। तो दुनिया ने हमें इस्तेमाल कर लिया और हम ये समझ रहे हैं कि हम दुनिया को इस्तेमाल करते रहे, ये दुनिया का धोखा था। दुनिया के धोखे के अंदर ये दो चीज़ें होती हैं कि दुनिया हमको इस्तेमाल कर रही है या हम दुनिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, और दुनिया के अंदर रहते हुए हमने अपने मकसद को पाया है या बगैर मकसद को भूल कर हम दुनिया को अपना मकसद बना चुके हैं। जो आदमी दुनिया को अपना मकसद बना लिया और उसमें इस तरीके से बिजी हो जाए कि वह आखिरत का कोई काम कर ना सके, दीन का काम ना कर सके, अल्लाह को सही याद ना कर सके, अल्लाह की मारिफत ना सीख सके, वो दुनिया उसको धोखा दे गई। इसीलिए कुरान पाक में जगह जगह है फला तगुर्रन्नकुम अल्हयातुद दुनिया, देखो हरगिज धोखा ना दे तुमको दुनियावी जिंदगी। अब आयत है कुरान पाक की, अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं सोचना है इसको, क्यों फरमा रहे हैं अल्लाह ताला, ऐ ईमान वालो तुमको धोखा ना दे दुनियावी जिंदगी, वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और हरगिज धोखा ना दे तुमको धोखा देने वाला। गरूर से मुराद शैतान है, शैतान तुमको धोखा ना दे और दुनिया तुमको धोखा ना दे, देखो इसके धोखे से तुम बच के आ जाना, फिर मेरे ऊपर आके नहीं बोलना कि आपने बचाया नहीं, मैंने तो रास्ता बता दिया, तौफीक भी दे दी, असबाब भी दे दी, हिम्मत भी दे दी, कोशिश करते और हिम्मत करते तो मिल जाती। तो ये एक फील्ड है पूरी, एक मैदान है जिसको हमारे अकाबरीन और बुजुर्गान दीन हमेशा करते रहे हैं। तो इस मुल्क में रहने वालों के जिम्मे भी बहुत ज़रूरी है। और अजीब बात यह है मेरे बुजुर्गों और मेरी बहनों कि अमेरिका में जो है ना दीन के नाम पे बहुत से काम हो रहे हैं, लेकिन इस टॉपिक पे बहुत ही कम हो रहा है, और भी कम हो रहा है। ये भी तो एक काम है ना, ये भी तो एक फील्ड है, इस फील्ड में क्या काम हो रहा है, कुछ भी नहीं। चलो भाई थोड़ी बहुत मस्जिदें बन रही हैं, नमाज वमाज का काम हो रहा है, मदरसे भी बन रहे हैं, तालीम का भी काम हो रहा है, सेंटर चल रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलते रहते हैं, ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम, एजुकेशन का कुछ ना कुछ काम होता रहता है दीन की भी, लेकिन ये लाइन के अंदर बहुत ज़्यादा सुस्ती है। और ये असल में उसमें जान डालने वाली चीज़ है, ईमान में भी और इस्लाम में भी, दोनों की रूह यही है, तो रूह ही नहीं है। तो इसलिए हमें इस मौजू पर ध्यान लगाने की और तवज्जो करने की, सलाहियतें अपनी लगाने की, अजाइम करने की, कोशिशें करने की, तदबीरें अख्तियार करने की ज़रूरत है। इसमें बड़ी बड़ी सलाहियतों वाले लोग होते हैं लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिलता, उनको कोई समझाने वाला नहीं होता, बताने वाला नहीं, उनका जहन अगर काम करना शुरू करे तो बड़े बड़े काम इनसे होते हैं। वजह उसकी यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती की कैपेसिटी बहुत होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उम्मती है, कोई हो, जाहिल हो, आलिम हो, गुनहगार हो, नेक हो, हुजूर के उम्मती होने की वजह से एक उसकी ख़ास इस्तेदाद है, उसके अंदर फैज़ होता है हुजूर का, बहुत ज़्यादा है वो। तो इसीलिए अगर कोई भी मुसलमान जो है ना थोड़ा सा सूझबूझ वाला है, मुतवज्जे हुआ इस पर, तो काम उससे बड़ा होगा, बड़े से बड़ा काम वो कर सकता है। तवज्जो की ज़रूरत, उसको समझ में आना है कि ये एक फील्ड है, इसमें जान लगना है, इसमें माल लगना है, बड़े से बड़ा माल आदमी लगा सकता है इसमें। जिन लोगों के समझ में आ गया उन्होंने बड़ा माल झोंक दिया, बड़ा वक्त लगा सकता है, बड़ी सलाहियतें लगा सकता है, समझ में आने की बात होती है। मदरसों में कितना पैसा लगा रहे हैं लोग माशाल्लाह, जो समझ में आ गई। मस्जिदों में कितना पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि समझ में आ गई बात कि मस्जिद की क्या अहमियत है, मदरसे की क्या अहमियत है। अब जिनके पास तज़किए की अहमियत आ जाएगी, तज़किए पे भी ऐसे ही लगा देंगे। एक मरतबा एक मदरसे में गए हम, दारुल ज़करिया साउथ अफ्रीका, वहाँ पे मेहमानों को एक साहब चाय पिला रहे हैं, इधर से उधर उधर से इधर। मैं जवान बच्चा है तो मुझसे एक साहब कहने लगे, जानते हो इनको? मैंने कहा मैं कहाँ जानता हूँ, तो पहली बार तब आया हूँ यहाँ। तो कहने लगे आप जरा विंडो में से पीछे देखो इधर। तो पीछे देखा तो बहुत बड़ी इमारत जो है ना बन रही थी दारुण जकरिया की, उसका हॉस्टल बन रहा था। तो कहने लगे ये बच्चा बनवा रहा है और उसकी शर्त यह है कि इसमें किसी दूसरे का एक पैसा भी नहीं लगेगा, पूरा पैसा मेरा लगेगा। तो मैंने कहा इसमें अब तक कितने लग गए? तो कहने लगे अब तक 7 मिलियन इसके लग चुके हैं। 7 मिलियन वहाँ का जो करेंसी होती है वो उसकी लग चुकी है। और उसने कहा कि इसको कंप्लीट मैं ही करूँगा। जिसको समझ में आ गया ऐसा समझ में आया, दिन का काम समझ में आ गया ऐसा लगा रहे लोग। उनको पता है कि अल्लाह ने माल दिया है तो काहे के लिए है, वो असल आखिरत बनाने के लिए। एक मैं तो फलाह दारे में गया हुआ था तरके सर, वहाँ एक साहब आए हुए थे, वहाँ मोहतिम साहब से सलाम अलैक हुई, हमारे छोटे भाई पढ़ते थे वहाँ। थोड़ी देर के बाद कहने लगे इनको जानते हो? मैंने कहा नहीं जानता। कहने लगे ये मूसा साहब हैं, इनका नाम मूसा है, मूसा राव। मैंने कहा अच्छा, बहुत खुशी की बात है। तो कहने लगे ये हमारे मुआविन में से। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कहने लगे बहुत स्पेशल मुआविन है। मैंने कहा और भी अच्छी बात है। तो फिर उसके बाद मोहतिम साहब कहने लगे कि इन्होंने ये शर्त रखी हुई है कि इस मदरसे का पूरा खर्चा वो उठाएंगे और उस मदरसे में 700 बच्चे बोर्डिंग में थे, वहाँ के पूरी तनख्वाहें मैं दूंगा और बोर्डिंग का पूरा फ्री का खाना जो होता है बच्चों का, 700 बच्चों का 3 टाइम का रोजाना का वो मैं दूंगा। बड़ा मदरसा है 700 बच्चों का। कहने के ये साहब उठाते हैं और उन्होंने चंदा माना कर दिया कि किसी से चंदा लेने की जरूरत नहीं, मैं अकेला इसको बर्दाश्त करूंगा, ये वो साहब है। मैंने कहा ये काबिल काबिल सताइश पजीराई बात है, वो मदा की बात है, तारीफ की बात है, अल्लाह जजाय खैर दे, इस्तेकामत दे, पूरे असातिज़ा की तनख्वाहें भी करने वाले जो है ना मसाजिद बनाने वाले। क्यों क्यों है ये सारा? जानो माल जब आदमी की समझ में आ जाता है कि हम हैं अल्लाह के लिए तो अल्लाह के दीन का काम हो जाए, अल्लाह की खिदमत हो जाए, अल्लाह की याद हो जाए, अल्लाह के कलमे का बुलबाला हो जाए, अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए दुनिया में, इस्लाम फैल जाए, इस्लाम की हिफाजत हो जाए, यही काम में दिमाग आदमी का काम करता है, यही इसी चीज़ों में दिमाग काम करता है। हमारा काम नहीं कर रहा, हमारा इसमें दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा? क्यों अल्लाह से ताल्लुक़ हमारा कमज़ोर हो गया? अपनी हकीकत भूल गए, कहाँ से आए, क्यों आए, कहाँ जाना है ये भूल गए। तो इधर अपने को ले जाना है, फिर छोड़ें इस तो यानी इन चीज़ों से अपना ताल्लुक़ कम करें, ज़रा सा अपना जहन हटाएं इस दुनिया दनी से, कमीनी दुनिया से, ये नहीं साथ देने वाली चीज़ है, ये बेवफा है, इसने बहुत लोगों को धोखा दिया है, बड़े बड़े फराइना को धोखा इसने दिया है, बड़े कयासरा को दिया है, बड़े नवाबों को दिया है, बड़े दुनियादारों को दिया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लोगों के पास थी, बड़े बड़े देवड़ियाँ उनके पास थी, महल्लात उनके पास थे। हमारे पास हैदराबाद में एक एक नवाब की देवड़ी बेचे तो कई कई महल्ले बन रहे हैं एक देवड़ी के अंदर, एक देवड़ी में एक एक महल्ला नहीं बन रहा, कई महल्ले बन रहे हैं एक देवड़ी के अंदर। कहाँ हैं वो लोग, किधर चले गए? अपने खबरों में पड़े हुए हैं, हसरतें लूट रही हैं उसके ऊपर और कुछ नहीं। ख्वाब था जो कुछ भी देखा, जो कुछ जो सुना अफसाना था, बस इतनी सी हकीकत है फरेब ख्वाब हस्ती की कि आंखें बंद हों और आदमी अफसाना हो जाए। एक आदमी की आंख बंद होती है पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाता है वो, न बीवी न बच्चे न जॉब न माल न जना वाला प्रैक्टिस और न जना वाला सर्टिफिकेट न जना वाला लाइसेंस ये वो कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं यार। तो इससे अपना जहन हटाना है थोड़ा, हम कहाँ हैं इस वक्त, किसमें अपनी सलाहियत लग रही है, किसमें अपने जज्बात लग रहे हैं, किसमें अपना वक्त लग रहा है, किसमें अपना पैसा लग रहा है। अल्लाह ने दिया है जो कुछ भी दुनिया की नियमतें उनको अल्लाह ताला ही की रजा के लिए लुटा देने का जज्बा लाना है और अल्लाह की रज़ा हासिल करके इस दुनिया से जाना है। और अल्लाह की रज़ा अल्लाह की मारिफत के साथ है, मोहब्बत के साथ है, और वो कुर्बानी के साथ है, वो मुजाहिदे के साथ है। एक चैन है ये पूरी, इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया है कि सबसे पहले आदमी को अपना माइंड सेट करने का मसला है कि आप इधर रहेंगे या इधर रहेंगे, आपको इधर देखना है या इधर देखना है, इधर की तैयारी करना है या इधर की तैयारी करना है, अबना उल आखिरा में से बनना है या अबना उल दुनिया में से बनना है। उसने फरमाया कि इन लिकुल लिकुल बनून, हर एक को औलाद है, دنیا کی کچھ اولاد ہے، آخرت کی کچھ اولاد ہے، فکونو من ابناء الاخرہ، تم آخرت کی اولاد بنو، دنیا کی اولاد مت بنو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، نہ قرب عطا فرمائے، نہ معرفت اور محبت عطا فرمائے، دین کی فکر نصیب فرمائے، اپنی اولاد کو دیندار بنانے کی فکر نصیب فرمائے، اور پوری دنیا میں دین پھیلانے کی فکر نصیب فرمائے، اس ملک کے اندر دین کام کرنے کی فکر نصیب فرمائے، اس ملک کے برادران کو مسلمان بنانے کی فکر نصیب فرمائے، اور مسلمانوں میں ایمان میں کمال لانے کی فکر نصیب فرمائے، ہمیں اپنے اندر، ہماری بیوی بچوں کے اندر ایمان اور دینداری کو صحیح معنی میں صحیح دینداری، صحیح ایمان آ جائے، اس کی فکر کرنے والا بنائے، اور صحیح ایمان نصیب بھی فرما دے. اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو اپنے اپنے وقتوں پر ایمان کے ساتھ حسن خاتمہ نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.